आहन चाहत को लेकर मुंबई पहुंच चुका था। जहां तनु और चाहत उसे चाहत को पूरी फैमिली से छुपाने का कह रहे थे, वहीं चाहत और उसके घर आने से पहले ही आहन ने पूरी फैमिली को अपने विला में डिनर के लिए बुला लिया था। अक्षरा, विजय और दामिनी अलग अलग अंदाजे लगा रहे थे कि आखिर आहन ने उन्हें घर पर क्यों बुलाया होगा। जैसे ही आहन चाहत के साथ घर में एंटर हुआ, वो सब हड़बड़ा गए। ऊपर से चाहत प्रेग्नेंट भी थी। आहन उन लोगों को डिनर के लिए इकट्ठा होने का कहकर खुद चाहत के साथ कमरे में था। काफी देर तक आहन चाहत के पेट पर सिर रखकर कुछ महसूस करता रहा। अचानक चाहत ने कहा, भूख लगी है आहन, काफी देर हो गई है, मुझे अजीब लग रहा है, प्लीज कपड़े पहन लेने दीजिए। बोलते वक्त उसकी आवाज़ बिल्कुल धीमी और सॉफ्ट थी, जैसे कि वो पहले बात किया करती थी। आहन तुरंत चाहत से अलग हुआ और उसकी बात पर हामी भरी। आहन चाहत से दूर तो हो गया था, पर उसकी नज़रें उस पर टिकी हुई थीं। चाहत आहन के नज़रों की तपिश महसूस कर सकती थी। वो चेंज करने के बजाय वहां पर वैसे ही खड़ी थी। जब आहन ने अपनी नज़रें नहीं हटाई तो चाहत ने सिर हिलाकर कहा, या तो मुझे बाथरूम में जाने दीजिए या फिर कुछ देर के लिए मेरी तरफ मत देखिए, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। आहन ने कुछ नहीं कहा और दूसरी तरफ देखने लगा। चाहत ने जल्दी से चेंज किया। उसने स्लीवलेस व्हाइट और पिंक फ्लोरल लूज फ्रॉक पहना था, जो उसे काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा था। आहन ने उसका हाथ पकड़ा और फिर कहा, चलो चलते हैं, 5 मिनट और दीजिए। चाहत ने आहन का हाथ अपने हाथ से अलग करके कहा और अपने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ा दिए। आहन चाहत के आने का इंतज़ार करने लगा और उसकी नज़रें बाथरूम के दरवाजे पर टिकी हुई थीं। लगभग 5 से 7 मिनट बाद चाहत बाहर आई तो फिर वो उसे लेकर डाइनिंग एरिया में पहुंचा, जो गार्डन में सेट किया हुआ था। आहन और चाहत को देखते ही वो सब चुप हो गए थे। आहन ने पहले चाहत को बैठाया और फिर उसके पास बैठकर उन सब की तरफ हल्का मुस्कुराते हुए कहा, आप सब लोगों के चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? मुझे लगा कि आप हम दोनों को देखकर खुश होंगे। हम तो बहुत खुश हैं बेटा, लेकिन यहाँ कुछ लोगों को झटका लगा हुआ है, शिमानी ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा। फिर आहन की नज़र दामिनी की तरफ गई, जो उतरे हुए चेहरे के साथ उसकी तरफ देख रही थी। आहन ने दामिनी से कहा, सुना है तुमने एक लड़की को जन्म दिया था, बिल्कुल सही टाइम पर एक्सीडेंट हुआ था मेरा, वरना आज तुम्हारे चेहरे पर ये चमक नहीं होती। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि वो एक्सीडेंट सच में एक एक्सीडेंट था या किसी की सोची समझी साजिश। बोलते हुए आहन ने सर्द निगाहों से विजय की तरफ देखा। विजय के चेहरे पर तो जैसे हवाइयाँ छूटने लगीं। वो तुरंत खुद को सख्त करके तेज आवाज में बोला, कहना क्या चाहते हो तुम? मैंने तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया था, जबान संभाल के बात करो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। आहन ने तुरंत तेज आवाज में कहा, तुम भी जबान संभाल कर बात करो और याद रखो कि किसके सामने बैठे हुए हो। पहली बात तो तुम मेरे बाप नहीं हो और ना ही बनने की कोशिश करो, और दूसरी बात, तुमने क्या किया है उसका पता लगाने में मुझे देर नहीं लगेगी। जिस दिन सच मेरे सामने आ गया, उस दिन तुम्हारा क्या होगा? इस बारे में भी पहले से प्लान कर रखा है या एक बार फिर तुम्हें सरप्राइज देना होगा? आहन ने गुस्से में जवाब दिया। उसकी एक एक बात विजय और दामिनी के दिल में डर पैदा कर रही थी। विजय ने हैरानी से आहन की तरफ देखकर कहा, तो तुम्हें सब याद आ गया है? आपको क्या लगा था मुझे सब याद नहीं आएगा? आहन ने भौंयें उठाकर कहा। उसकी बातें इस तरफ इशारा कर रही थी कि वाकई आहन को सब याद आ गया था। अक्षरा वहां से उठकर जाने को हुई, तभी आहन ने उसका हाथ पकड़कर उसे पहले ही रोक लिया और उसकी तरफ देखकर कहा, अभी नहीं मिस गोयनका, या यूं कहो मेरी नकली डॉल, अभी तो हिसाब किताब बाकी है। चलिए बाकी बातें होती रहेगी, पहले डिनर करते हैं, क्या पता बाद में आपको शांति से खाना नसीब हो या नहीं भी। हमें तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं खाना है, हम अपने घर जा रहे हैं, और अपना ये तमाशा और बाप बनने की खुशी बचा कर रखो। जैसा तुमने दूसरों के साथ किया है वैसा ही तुम्हारे साथ होगा, दामिनी गुस्से में बोली और वहां से उठकर जाने को हुई। तभी उसने देखा कि वहां उनसे कुछ दूरी पर उन्हें गार्ड्स ने घेर रखा था, जिनके हाथ में बंदूक थी। उन्हें देखकर दामिनी ने वापस अपने कदम पीछे ले लिए। वो धीरे से बड़बड़ाकर बोली, अजीब जबरदस्ती है, ये उस एक्सीडेंट में बचा ही क्यों, इसे तो मर जाना चाहिए था। आहन ने दामिनी की तरफ तिरछा मुस्कुराते हुए देखा और कहा, वो क्या है ना, अभी कुछ लोगों के पापों का हिसाब हुआ नहीं था, इसीलिए मेरी जान बच गई। अभी कह रहा हूँ खाना खा लीजिए, क्या पता कल को खाना भी नसीब ना हो। मजबूरी में उन सबको डिनर करना पड़ रहा था। इन सब में आयुष और शिवानी बहुत खुश थे। आयुष शिवानी के पास खिसककर धीरे से बोला, कहा था ना मॉम, एक बार भाई को फॉर्म में आने दीजिए, फिर अच्छे अच्छे के छक्के छुड़ा देंगे। देखो कैसे इन सबके चेहरे उतरे हुए हैं। शिवानी ने मुस्कुराते हुए उसकी बात पर हामी भरी। चाहत उन सबकी बातें चुपचाप सुन रही थी, उसका ध्यान कहीं और ही था। तभी आहन ने अपने हाथों से उसे खाना खिलाया तो चाहत का ध्यान टूटा। अक्षरा जलती हुई निगाहों से चाहत की तरफ देख रही थी। वो मन ही मन बड़बड़ा कर बोली, मैंने मना किया था इस लड़की को कि यहाँ वापस नहीं आना है, फिर भी मुंह उठा कर आ गई। मेरी ही गलती है जो उसे दिन जाने दिया, वरना मुझे तो इसकी जान ले लेनी चाहिए थी, तभी आहन लाइन पर आता।
पर उसे वक्त मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि इसको मारने में वेस्ट करती। अक्षरा की नजरें चाहत पर ही थी और वो बुरी तरह उसे घूर रही थी। तभी आहन ने अक्षरा की तरफ देखकर कहा, आई नो तुम मेरी डॉल पर अपनी बुरी नजर लगाने के लिए तैयार बैठी हो, पर मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। जल्दी से खाना खाओ, मुझे और भी कई काम करने हैं। कुछ देर के लिए वहां बिल्कुल खामोशी छा गई क्योंकि सब खाने में व्यस्त थे। जब डिनर खत्म हो गया तब विजय गुस्से में बोला, हो गया तुम्हारा, अब जाने दो हमें यहाँ से। हमें कोई शौक नहीं है तुम्हारी खुशियों में शामिल होने का। अभी हुआ नहीं है, आहान ने हल्का मुस्कुरा कर कहा। उसने एक हाउस हेल्पर को इशारा किया तो वो कुछ पेपर्स के साथ बाहर आया। आहान ने वो पेपर्स विजय के सामने करते हुए कहा, चुपचाप इन पर साइन करो, उसके बाद तुम जा सकते हो। और मैंने साइन नहीं किया तो? और कैसे पेपर्स हैं ये? विजय कन्फ्यूजन से आहान के चेहरे की तरफ देख रहा था। मैंने कहा ना, पेपर साइन करने के बाद ही जा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, मत करो साइन, आहान ने कंधे उचकाकर बेपरवाही से कहा। वो पेपर वापस अपनी तरफ खींच रहा था तभी विजय ओबेरॉय ने उन पेपर्स को पकड़ा। आहान ने पेपर्स को छोड़ दिया था। विजय उन पेपर्स को गौर से पढ़ रहा था। उन्हें पढ़ने के बाद विजय आहान की तरफ देखकर चिल्लाकर बोला, पागल तो नहीं हो गए हो तुम? मैं अपनी सारी प्रॉपर्टीज और सब कुछ शिवानी और आयुष के नाम क्यों करूंगा? क्योंकि वो मेरी मॉम और आयुष का है, इसलिए तुम उनके नाम करोगे। इतनी सिंपल सी बात भी तुम्हें समझ नहीं आती है विजय ओबेरॉय, आहान ने सिर हिलाकर कहा।
चलो जाओ, जो करना है वो कर लो, मैं ये पेपर्स नहीं साइन करने वाला। अब सब तुम्हें याद आ ही गया है तो बता देता हूँ कि हाँ, मैंने ही करवाया था तुम्हारा एक्सीडेंट। मैंने और अक्षरा ने मिलकर ही इस लड़की को यहाँ से भगाया था। इसे झूठ बोला था कि इसकी माँ को तुमने मारा है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि इसकी माँ की मौत का हमें कैसे पता चला होगा, तो ये बात भी क्लियर कर देता हूँ, इसकी माँ को भी मैंने ही मारा था। इसे भी मारने के लिए गया था पर तुम सही वक्त पर आ गए थे और इसे बचा लिया। कहा ना, तुम्हारा बाप हूँ, दो कदम आगे ही रहूँगा। तुम कुछ भी कर लो आहन, मैं तुम्हें चैन से कभी नहीं जीने दूंगा। विजय बेशर्मी से बिना किसी हिचक के अपने सारे गुनाहों को कबूल कर रहा था। आहान अपनी लाल आंखों से विजय को गुस्से में देख रहा था तो वहीं विजय का पूरा ध्यान भी आहान की तरफ ही था। अचानक किसी ने विजय के गाल पर कसकर तमाचा लगाया। वो चाहत थे, उसकी आंखों में आंसू थे। कोई इंसान इस हद तक बेशर्म हो सकता है? मुझे नहीं पता था। मेरी मम्मा ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने उन्हें मार डाला और मुझे भी मारने के लिए आए थे? आपकी दुश्मनी आहान के साथ है, फिर हमें इसमें घसीटने की क्या जरूरत थी? सीधे सीधे बोलिए ना, आहान से मुकाबला करने की आपकी औकात नहीं है तो मासूम लोगों को शिकार बनाया? चाहत विजय ओबेरॉय पर चिल्लाकर बोली। चाहत ने विजय को चांटा मारा था, वो भी सबके सामने। ये उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो उसे धकेलते हुए बोला, तुम दो कौड़ी की लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? आहान ने चाहत को संभाल लिया था वरना इस वक्त वो जमीन पर गिरी होती। चाहत की आंखों में आंसू थे तो वहीं आहान सर्द निगाहों से विजय की तरफ देख रहा था। उसने चाहत को एक तरफ किया और आगे बढ़कर विजय ओबेरॉय का गला दबाते हुए कहा, तुम हो तो कौड़ी के इंसान, खुद को समझते क्या हो? तुम्हारी इज्जत दो रुपए की भी नहीं है। तुम्हें रोड पर भीख मांगने पर मजबूर नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी आहान ओबेरॉय नहीं, हर हद से गुजर जाऊंगा। सही गलत कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखा कर रहूंगा। बोलते हुए आहान विजय का गला दबा रहा था और वो उसे छूटने के लिए छटपटा रहा था। इन सब में दामिनी और अक्षरा की हालत खराब हो रही थी। जब विजय का ये हाल था तो दामिनी और अक्षरा का क्या हाल होने वाला था, ये सोचकर ही उन्हें डर लगने लगा। छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो क्या? पहले से ही पागल थे, विजय छटपटाते हुए बोला। पर आहान पर उसका कोई असर नहीं हुआ। जब उसे लगने लगा कि विजय की सांसें उसका साथ छोड़ रही हैं तो आहान ने उसे छोड़ दिया। वो जमीन पर गिरा पूरी तरह खांस रहा था। दामिनी उसे संभाल रही थी। दामिनी आहान की तरफ देखकर चिल्लाकर बोली, तुम्हारा पागलपन का कोई इलाज नहीं है, यहाँ से बाहर जाने दो, फिर बताती हूँ मैं तुम्हें कि तुमने आज जो किया है उसका तुम्हें क्या सबक मिलता है। अच्छा ख्याल है मिसेस ओबेरॉय, पर क्या लगता है यहाँ से बाहर निकल पाओगी? आहान ने भौंहें उठाकर कहा। उसके चेहरे पर ईविल स्माइल थी। दामिनी हैरानी से आहान की तरफ देख रही थी। उसे आहान के देखने के तरीके से सच में डर लग रहा था। तभी आहान जोर से चिल्लाकर बोला, कैद कर लो इन तीनों को और इस घर के बेसमेंट में रखो, देखता हूँ कब तक जिंदा रहते हैं ये बिना खाना पानी के। बोला था ना, पेट भर के खा लो, कल को खाना नसीब भी नहीं होगा। इतना कहकर आहान अंदर चला गया। इस बार उसके फैसले से किसी को फर्क नहीं पड़ा और ना ही किसी ने उसे समझाने की कोशिश की, खासकर चाहत ने तो बिल्कुल नहीं। उसने नफरत भरी निगाहों से विजय की तरफ देखा, जिसने उसकी बेकसूर माँ को बिना किसी वजह के मार दिया था।